नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
को दे दिया आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन दे दिया आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुमसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया आज से मैं उसके लिए जीऊंगा।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज के इस सुंदर अवसर के लिए जिसे उसने हमें दिया है ताकि हम फिर से उसके जीवित और पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें और उसकी महान सच्चाइयों को अपने जीवन में प्राप्त कर आशीष प्राप्त करें। मित्र, मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के पवित्र वचन में से सीखने के लिए तैयार हैं। मित्रों, आपको याद होगा कि हम उत्पत्ति की पुस्तक के 37 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने यूसुफ की कहानी के बारे में देखना आरंभ किया था कि यूसुफ किस प्रकार अपने भाइयों के पास हेब्रोन से शकेम के मैदानी क्षेत्र में उनका हाल चाल पूछने के लिए गया और उसके स्वप्न के कारण और उसके रंग बिरंगा अंगरखा के कारण उसके भाई उससे ईर्ष्या कर मार डालना चाहते थे। तो आज हम उससे आगे की बातों पर विचार करेंगे और उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 21 पद को पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, परंतु रूबेन ने यह सुना और उसे उनके हाथ से बचा लिया। उसने कहा, हम उसे घात न करें। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि यदि रूबेन कोई हस्तक्षेप नहीं करता तो वे उसे निश्चय ही मार डालते। तब हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 22 पद में आगे पढ़ते हैं, रूबेन ने उनसे यह भी कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल में इस गड्ढे में डाल दो, परंतु उस पर हाथ मत उठाओ, वह तो उसको अर्थात यूसुफ को उनके हाथ से छुड़ा कर पिता के पास पहुंचाना चाहता था। यहां पर रूबेन का उद्देश्य था कि जब वे यूसुफ को गड्ढे में डाल चुके होंगे तब वह बाद में वापस आकर उसे निकाले और सुरक्षित पिता के पास पहुंचा दे। हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 23 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया। मित्रों, यहाँ पर यूसुफ का रंग बिरंगा वस्त्र सांड के सामने लहराने वाले लाल रंग के वस्त्र के समान था। वे उससे घृणा करते थे क्योंकि इसी वस्त्र ने उसे उनसे अलग कर दिया था। मित्रों, ज्येष्ठाधिकार की व्यवस्था के अनुसार बड़े भाई को यह अधिकार था कि वह पहले मांग रखे, इसलिए उन्होंने यूसुफ से उस घृणा के वस्त्र को उतार लिया। तब हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 24 और 25 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसे पकड़कर गड्ढे में फेंक दिया। वह गड्ढा तो सूखा था, उसमें कुछ भी पानी ना था। तब वे भोजन करने बैठ गए और जब उन्होंने आंखें उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। मित्रों, यह व्यापारियों का एक काफिला था जो उस रास्ते से होकर जा रहा था। हम इसके अगले पद में अर्थात उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 26 और 27 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से हमें क्या लाभ होगा, आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारा ही हाड़ मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। अब यहां पर हम देखते हैं कि उसका एक दूसरा भाई यहूदा व्यापारियों को देखकर हस्तक्षेप करता है, यह उसकी बहुत ही स्वार्थी योजना थी, परंतु वह नहीं चाहता था कि कोई हत्या हो। वह यह भी नहीं चाहता था कि उसके भाई यूसुफ के खून से उनके हाथ रंगे, और इस सलाह को उसके भाइयों ने भी मान लिया क्योंकि वे यूसुफ से छुटकारा पाना चाहते थे, और वे किस प्रकार होगा इसकी उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने इस बात को जान लिया कि ये इस्माइली व्यापारी उसे मिस्र में ले जाकर दास होने के लिए बेच देंगे, और इस तरह से वे उसे छुटकारा तो पा ही रहे थे। मित्रों, दास या दासत्व कई स्थानों पर तो जीते जी मृत्यु के समान थे, इसलिए वे निश्चित रूप से जानते थे कि वे दोबारा उसकी आवाज कभी नहीं सुनेंगे। तब हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 28 पद में आगे पढ़ते हैं, तब कुछ मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले, अतः उन्होंने उसको गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और उसे चांदी के 20 शेकेल में इस्माइलियों के हाथ बेच डाला। इस प्रकार वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। और मित्रों, इस स्थान पर संभवतः आप सोचते होंगे कि मूसा को, जिसने इस उत्पत्ति की पुस्तक को लिखा है, अपने मन को दृढ़ करना चाहिए था, क्योंकि पहले वह उन्हें इस्माइली कहता है और फिर मिद्यानी कहता है और अंत में फिर से इस्माइली कहता है। तो ये लोग कौन हैं? क्या यह बाइबल में कोई त्रुटि है? कुछ समय पहले किसी ने मुझे एक पुस्तक दिखाया जिसमें 1000 या 2000 सूची थी, जिसमें लिखा था बाइबल में त्रुटियां। उसे अच्छी तरह देखने के बाद मैंने पाया कि उस छोटी पुस्तक में त्रुटि है, न कि बाइबल में। उन त्रुटियों में यह भी एक त्रुटि थी। उन इस्माइली व्यापारियों को विद्यानी और फिर से इस्माइली कहने की। मित्रों, यह एक मजेदार विषय है, इसलिए हमें इसे थोड़ा बारीकी से या नजदीकी से देखना चाहिए। सबसे पहले हम इस बात को पाते हैं कि कैसे एक विरोधी और वे जो बाइबल से घृणा करते हैं बाइबल की गलत व्याख्या या अनुवाद कर सकते हैं, जबकि बाइबल इसकी वास्तविक सत्यता को दर्शाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस्माइली कौन थे या कौन है। मित्रों, वे इस्माइल के वंशज हैं जो इब्राहिम का पुत्र है। तो ये मिद्यानी कौन है? वे मिद्यान के वंशज हैं, वह भी इब्राहिम का पुत्र है। इस्माइल हाजिरा से उत्पन्न इब्राहिम का बेटा था, परंतु मिद्यान कतूरा से उत्पन्न इब्राहिम का पुत्र था। कतूरा, जिसे इब्राहिम ने सारा की मृत्यु के बाद ब्याह लिया था, उसी का पुत्र मिद्यान है। ये सब भाई ही थे। वास्तव में वे इन बेचने वाले लड़कों के समूह से, जो अपने भाई को ही बेच रहे थे, संबंधित थे। इस समय इसराइली कौन थे? केवल वे 12 ही इसराइली थे। मित्रों, आप क्या सोचते हैं कि इस समय तक कितने इस्माइली होंगे? इस्माइल इसहाक से बड़ा था, इसलिए हो सकता है कि 100 या उससे अधिक इस्माइली रहे होंगे। और कितने मिद्यानी रहे होंगे? यह भी अच्छा प्रश्न है। मिद्यान इसहाक के बाद पैदा हुआ, इसलिए वे अधिक नहीं थे। हो सकता है कि 12 या उससे कुछ अधिक रहे होंगे। मित्रों, ये सब एक छोटे समूह या दल थे, और उन दिनों में यात्रा करना खतरे से भरा होता था, और वे मरुभूमि को पार कर मिश्र देश को जा रहे थे। वे अपने सुरक्षा के लिए एक साथ जा रहे थे। वे अपने व्यापार के सिलसिले में मिस्र जा रहे थे, और जबकि वे एक दूसरे के संबंधी या रिश्तेदार थे, इसलिए एक दूसरे को समझ सके और एक साथ हो लिए। मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन अच्छा बोध देता है। यदि हम उसे अच्छा बोध देने देते हैं, तब हम वे लोग हैं जो अच्छा बोध नहीं लेते हैं। अनभिज्ञता, बाइबल में असंगति या अंतर विरोध है, ऐसा जो मानते हैं उसमें बहुत कुछ जोड़ते हैं। परंतु आप देख सकते हैं कि मूसा ने परिस्थितियों को समझा और उसने उसे बिल्कुल ठीक ठीक लिखा है। अब हम आगे देखते हैं कि यूसुफ दास होने के लिए बेच दिया जाता है। उसके 10 भाइयों ने यूसुफ को इस्माइलियों के हाथों बेच दिया, जो उसे अपने साथ मिस्र देश में ले गए। और आइए हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 37 अध्याय और उसके 29 से 31 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब रूबेन गड्ढे की ओर लौटा तो उसने देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, अतः उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले और उसने लौटकर अपने भाइयों से कहा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? इसलिए उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबो दिया। मित्रों, यहां पर हमें यह नहीं बताया गया है कि उन्होंने रूबेन को सब बातें बताई या नहीं, जिसे उन्होंने वास्तव में किया था, लेकिन मेरा विचार है कि उन्होंने अवश्य ही उसे भी बताया होगा, और संभवतः उन्होंने उसे यह भी बताया कि अब उनका पीछा करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस समय तक वे काफी दूर जा चुके होंगे। इसलिए हो सकता है कि उसने भी उन्हें एक अच्छी कहानी सोचने में मदद की होगी, ताकि उसे याकूब को बताया जा सके कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। हम उत्पत्ति उसके 37 अध्याय के 32 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास पहुंचाकर कहा, हमको यह मिला है, कृपया इसे देख लें कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है या नहीं। ये बड़े चतुर हैं, है कि नहीं? ये इस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने यूसुफ को कभी देखा ही नहीं है। उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि उन्हें यह अंगरखा मिला। मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए, वे उस कोट को या उस वस्त्र को जिससे घृणा करते थे अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से दिखावा किया कि वे इसे नहीं पहचानते हैं, और वे उसे पिता के पास पहचानने के लिए ले आए और उससे पूछा कि वे इस वस्त्र को पहचानते हैं या नहीं। और याकूब जानता था कि यह किसका वस्त्र है। वह एक स्वाभाविक निष्कर्ष पर पहुंचा, और यह सच है कि वे उसे इसी निष्कर्ष पर लाना चाहते थे। तब हम आगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37 अध्याय और उसके 33 पद में पढ़ते हैं। उसने पहचान लिया और कहा, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी जंगली पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। मित्रों, आइए हम यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर दूसरे तरीके से इसे देखें। उन्होंने एक बकरे के बच्चे को मारा और उसका खून उस अंगरखे या वस्त्र में लगा दिया। क्या पिता को एक बकरी के बच्चे से धोखा देना, जो हमें कुछ बातें स्मरण नहीं दिलाता है, जिसे हमने पहले भी सुना है? मित्रों, याद करें कि जब रिबका और याकूब गुप्त रूप में सहयोग दे रहे थे, तो उन्होंने भी बकरी के बच्चे का प्रयोग शिकार के मांस के रूप में किया और उन्होंने उस बकरी के बच्चे के चमड़े को लेकर याकूब के हाथ और गले में चिपका दिया, ताकि अपने पिता को धोखा दे। और अब यहाँ पर यूसुफ के भाई बकरी के बच्चे का खून अपने पिता को धोखा देने के लिए उपयोग में ला रहे हैं। वह और कोई नहीं परंतु याकूब ही है। उन्होंने उसे वह वस्त्र दिया और पूछा, क्या आप इसे पहचानते हैं? हमने इसे पहाड़ पर पड़ा हुआ पाया है, ऐसा लगता है कि कोई जंगली जानवर ने उसे फाड़ खाया है। और बूढ़ा याकूब इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसका पुत्र यूसुफ जंगली जानवर के द्वारा मारा गया। मित्रों, यहाँ पर सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिए कि याकूब ने भी अपने पुत्रों के द्वारा ठीक उसी तरीके से धोखा खाया है जैसे उसने अपने पिता को धोखा दिया था। एक कहावत है कि जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। हम गलतियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मित्रों, इस वचन पर ध्यान दें कि कुछ और नहीं और न ही कुछ मिलता जुलता, परंतु वैसा ही काटेगा। यह व्यक्ति याकूब ने कुछ बुरा बोया, उसने धोखे का प्रयोग किया और अब वह एक पिता है, अब उसे भी उसी प्रकार का धोखा दिया जा रहा है जैसा कि उसने कई वर्ष पहले अपने पिता को दिया था। मित्रों, जब हम मकई बोते हैं तो मकई ही काटते हैं, और जब हम जंगली घास बोते हैं तो हम जंगली घास ही काटेंगे, हम जो बोते हैं वही पाते हैं। मित्रों, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह सच है। यह शारीरिक क्षेत्र में सत्य है, नैतिक बातों में सत्य है, और आत्मिक क्षेत्र में भी सही है, और यह बात विश्वासियों के लिए भी सत्य है। यदि सोचते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए पाप के साथ जी सकते हैं, तो आप जान लीजिए कि एक दूसरा विचार भी आपके अंदर आ रहा है। वास्तविक रूप से आप दूसरे विचार को ले लीजिए और पाप न कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को आदर नहीं देते हैं। उसने कहा, इसी रीति से सब होने वाला है और आप इसमें अपवाद नहीं हैं। मैंने एक परमेश्वर के सेवक से बातचीत की जो किसी अन्य पुरुष के स्त्री के साथ गलत संबंध रखता था। जब मैंने उसे बातचीत करना आरंभ किया तो वह इस आधार पर सफाई देने लगा कि वह परमेश्वर का एक विशेष व्यक्ति है। उसने सोचा कि वह जो है उसके बल पर वह कुछ और अलग योजना को भी पूर्ण कर सकता है, और एक भिन्न नियमावली पुस्तक के द्वारा वह दूसरों से अलग कुछ कर सकता है। परंतु उसने पाया कि परमेश्वर लोगों को देखकर उनका आदर नहीं करते या मुंह देखकर वर्ताव नहीं करते हैं। मित्रों, इसे समझने में उन्हें काफी समय लगा, लेकिन अंत में यह व्यक्ति भी वापस अपने समझ में आ ही गया। अब यहां पर याकूब के दुख पर ध्यान दीजिए। हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 34 और 35 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः याकूब ने अपने कपड़े फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक शोकित रहा। तब उसके सब बेटे बेटियों ने उसे शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली, और उसने कहा, मैं तो अपने पुत्र के लिए विलाप करता हुआ अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता रहा। मित्रों, हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे सोचते होंगे कि याकूब के दुख को प्रकट करने का यह एक तरीका था कि वह अपने पुत्र यूसुफ से कितना प्रेम करता था। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि वह निश्चय ही अपने पुत्र से बेहद प्रेम करता था, लेकिन यह इस बात को भी प्रकट करता है कि याकूब अभी भी विश्वास के द्वारा जीना नहीं सीखा था। मित्रों आप उसके अनुभव को याद करें जिसे उसने पनियल में प्राप्त किया था। यह उसके पुराने अहम अर्थात घमंड का टूटना था और वहां पर उसका मानव स्वभाव समाप्त हो गया, परंतु अब उसे विश्वास के द्वारा चलना सीखना चाहिए था। वह अभी तक चलना नहीं सीखा है। वास्तव में याकूब के विश्वास के बारे में इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय में बताया गया है, परंतु उसके जीवन के बारे में कुछ भी उदाहरण स्वरूप नहीं बताया गया है जो उसके विश्वास से संबंधित हो। जब तक कि उसके मृत्यु का समय नहीं आ गया तब जाकर विश्वास प्रदर्शित हुआ है। मित्रों हम यहाँ पर याकूब के दुख को दाऊद राजा के दुख के साथ तुलना करके देखते हैं। दूसरा शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय उसके 15 से 23 पद में हम इसे पढ़ सकते हैं, जहां पर दाऊद अपने पुत्र के लिए रोया जो मर गया था। दाऊद उस छोटे बच्चे से प्रेम करता था जैसे कि याकूब भी अपने बेटे यूसुफ से प्यार करता था, परंतु यहाँ पर अंतर यह है कि राजा दाऊद विश्वासी व्यक्ति था। वह यह जानता था कि यह छोटा बालक फिर से वापस नहीं आ सकता है। वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि वह एक दिन अवश्य ही उस छोटे बालक के पास जाएगा। वह क्या विश्वास है मित्रों। आप याकूब को देखें कि वह विश्वास पर अटल नहीं रहा और उसका दुख एक अस्वाभाविक दुख है। मेरे मसीही मित्रों, संभवतः आपने भी अपने प्रियजनों को खोया होगा और संभवतः आप उस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं आपसे नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, निर्दयता से नहीं, कि कृपया आप विश्वास करें अर्थात विश्वास के द्वारा चलना सीखें। जब आप इस बात को जान गए हैं कि आप दुखी होने के द्वारा अपने प्रियजन को वापस नहीं ला सकते हैं, तो अपने विश्वास को सामने लाइए, क्योंकि यह दुख हमारा कुछ भी भला नहीं करता है। यदि आप परमेश्वर के संतान हैं और आप उसके लिए दुखित हो रहे हैं जो परमेश्वर का संतान है, तब आप विश्वास के द्वारा चलें, तब आप उसे देखेंगे और कभी भी अलग नहीं होंगे। मित्रों, संसार के पास विश्वास नहीं है, इसलिए वे ऐसे शोकित होते हैं जैसे बिना किसी आशा के। मेरे मसीही मित्रों, आप विश्वास के द्वारा चल सकते हैं। अब इस अध्याय का अंतिम पद मिस्र में यूसुफ के पीछे ले जाता है, तो आइए हम उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 36 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नाम फिरौन के एक हाकिम के हाथ जो अंगरक्षकों का प्रधान था बेच डाला। मित्रों यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अब हम यूसुफ की कहानी इसके अगले अध्याय 39 में देखेंगे। यह अध्याय भी बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे एक गाय के 5 पैर। मित्रों इस कहानी को पढ़ने के बाद हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इसे बाइबल में ना लिखा होता तो अच्छा होता। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि यह अध्याय बाइबल में क्यों है। मैं इस बात से सहमत हूं कि बाइबल में यह अध्याय सबसे खराब अध्याय है, परंतु यह अध्याय हमें यहूदा के गोत्र की पृष्ठभूमि की कुछ जानकारी देता है, जिस गोत्र से प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ। यही घटना इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है कि यह भी बाइबल की लेख में शामिल किया गया। आप इस अध्याय में कुछ नामों को पढ़ेंगे, जैसे यहूदा और तामार और पेरेस और जेरह। यदि आपको ये नाम जाने पहचाने से लगते हैं, तो इसे आपने मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में पहले पढ़ा है। ये नाम यीशु मसीह की वंशावली की सूची में पाए जाते हैं। मित्रों यह एक अद्भुत बात है कि हमारा प्रभु पापियों के वंशज से आया। वह पूरी तौर से आपके और मेरे जैसे बनाए गए, फिर भी वे स्वयं पाप रहित थे। वह उस वंश से आए जहां सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। मित्रों यह अध्याय पाप और यहूदा के शर्मिंदगी के बारे में बताता है, और यही मुझे ऐसा कहने के लिए उत्साहित करता है कि निश्चय ही याकूब के बेटे उसे अधिक सुख नहीं दे रहे थे, और यह ऐसे लगता है मानो उसके सभी पुत्र समस्या उत्पन्न करने वाले थे, सिर्फ यूसुफ और विन्यामिन को छोड़कर। और यूसुफ भी दिलासा नहीं था, क्योंकि उसके लापता होने से उसके पिता का हृदय टूट चुका था। मित्रों ये सारी बातें हमें यह प्रकट करती है कि याकूब ने अधिक समय पदन आराम में संपत्ति इकट्ठा या जमा करने में लगा दिया। इससे बढ़कर कि वह अपने बच्चों को शिक्षा देने में लगा था। मित्रों, वह इब्राहिम से कितना भिन्न था। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, जिसे हम उत्पत्ति 18 अध्याय के 19 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने उसे इसलिए चुना है कि वह अपने बच्चों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा दे कि वे धार्मिकता और न्याय के काम करते हुए यहोवा के मार्ग पर स्थिर बने रहें, जिससे कि जो वचन यहोवा ने इब्राहिम के विषय कहा है उसे पूरा करें। यह ठीक है, लेकिन याकूब ने ऐसा नहीं किया। वह तो वहां अपने मामा लाबान के साथ संघर्ष में व्यस्त था और उसके पास अधिक समय बच्चों के साथ बिताने के लिए नहीं था। वह दुखपूर्ण था क्योंकि ऐसा लगता है कि उनमें से प्रत्येक ने कुछ न कुछ ऐसे काम किए थे जो बहुत ही पापपूर्ण थे, अर्थात वे उसमें सम्मिलित थे। मित्रों, इस अध्याय 38 को परमेश्वर के वचन में शामिल करने के लिए मुझे लगता है अगला कारण है। हम इसे अगले अध्याय 38 से आरंभ करते हैं और यूसुफ के साथ मिस्र देश में पहुंचते हैं, जहां परमेश्वर यूसुफ को पहले से आगे भेज रहा है। जीवन में जो आकस्मिक परिस्थितियां निर्माण हुई उनसे जान लिया था कि वह इसराइल के पुत्रों के लिए मिस्र देश में आने के लिए मार्ग तैयार कर रहा है, ताकि वह उनके जीवन को कनान देश में अकाल के समय सुरक्षित रख सके। परंतु इससे भी बढ़कर वह उन्हें कनान देश से बाहर निकालकर इस घृणित कनानियों से अलग मिस्र देश के गोशेन में, जो एक एकांत भूमि थी, ले जाएगा। याकूब और उसके परिवार के लोग कनान में रहते तो वे भी कनानियों की तरह हो गए होते। मित्रों, हमारे सामने में जो अध्याय है वह हमें यह प्रकट करता है कि याकूब के परिवार को अपमानजनक कनानियों के प्रभाव से दूर करना क्यों आवश्यक था। इसलिए अध्याय 38 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। मित्रों, यहाँ पर हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए आज हम इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन हम अगले अध्ययन में इसे अवश्य देखेंगे। तब तक प्रभु आप सबको अपनी आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।